أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم بہت ہی خوبصورت کردار کے بارے میں جاننے والے ہیں، جبرائیل علیہ السلام. میں اگر صرف 3 سے 4 سیکنڈ خاموش رہ کر آپ سب کو موقع دوں، سوچئے، واٹ ڈو یو نو اباؤٹ جبرائیل علیہ السلام؟ اور کیا اس پہ ایک پورا لیکچر ہونا چاہیے؟ تو میں آپ کو بھی بتا دوں کہ صرف آج ہی کا ایک لیکچر نہیں، اس کا پارٹ 2 بھی آئے گا. اتنا کچھ ہے کہ آئی کوڈنٹ کور اٹ. یہ وہ حقیقتیں ہیں. میں آج جب یہ سب ذرا آتے وقت تک میرا دل نہیں کر رہا ہوتا تیار ہو، میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ میں کچھ اور سمجھ لوں کچھ اور. تو میں یہ سوچی تھی کہ سارے فرقے، مسلک، سیاستدان کیا کر رہے، یہ دنیا میں یہ باتیں کرنے کی بجائے اگر شروع سے ہی ہمارے جو دین کے رہنما ہیں وہ ہماری یہ 5 پلرز آف اسلام کی بنیادی چیزیں پختہ کر دیں، تو ہماری بلا سے حکومت کون کر رہا ہے، کون کھا رہا ہے، کون لے گیا، ہم خبریں سننے میں اتنا وقت ضائع نہ کرتے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اسے کوئی انکار نہیں کہ خبریں سنیں، اب کوئی اسے فتویٰ نہ لے لے. کہنے کا مطلب یہ کہ ہم اپنی زندگی میں دا موسٹ امپورٹنٹ اور ارجنٹ چیزوں کو چھوڑ کر سائڈ ایشوز پہ الجھے ہوئے. سچی جو بات ہے. تو یہ یومنون بالغیب کا ایک حصہ ہے آج کا لیکچر. باہر سے سننے والے یا بعد میں سننے والوں کو بھی یہ چیزیں فائدہ دیتی ہیں. یعنی ایمان بالغیب کیا ہے، ان سین ورلڈ. پہلا جو تقاضا ہے سورت بقرہ کے شروع میں وہ کیا ہے، یومنون بالغیب. تو اللہ نے دل میں ڈالا کہ اس سیریز کو آپ لوگوں کے ساتھ شروع کرنا ہے. آج کا لیکچر بھی پورے شوق سے سنیے اور اس کے اگلے پچھلے بھی یوٹیوب پہ نور القرآن ٹی وی سے سننا شروع کر دیں. یوٹیوب پہ NURULQURAN. لیکن آج ہم کیا سننے والے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی شخصیت اور ان کے بارے میں کچھ باتیں لفاظی نہیں، قرآن اور سنت سے. ٹھیک ہے، شروع کرو. چلیے، جزاک اللہ خیر. اب اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا سننا، اور چھوٹے چھوٹے پوائنٹس نوٹ کیجئے. آپ کے لیے اسکرین پہ جو سلائڈس کھولی جاتی ہیں اس میں صرف بلیٹ پوائنٹس ہوتے ہیں تاکہ آپ فوکس ہو کے رہیں اور ڈسٹریکشن چھوڑ کر. اور آج کل تو ہمارے فونس میں بھی نوٹ پیڈ موجود ہیں، کاغذ قلم نہ بھی ہو تو کوئی نہ کوئی ہمارے پاس ایسی چیز ہوتی ہے جسے ہم نوٹ کرتے ہیں، تاکہ جب بعد میں آپ اس لیکچر کو یاد کریں تو آپ کے ذہن میں چیزیں ہوں. اور میں بھی آپ لوگوں کا نا کل کے لیکچر کا ریکیپ دیکھ رہی تھی، تو آپ سب نے تو بہت ہی اچھا سنا کل، ماشاء اللہ، ویری گڈ. جنہوں نے بھی کل کے پوائنٹس یاد رکھے تھے، اللہ کرے کہ ہم ان سب چیزوں کو اپنے عمل میں بھی ڈھالیں. آئیے شروع کرتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. ایمان بالغیب یعنی بلیف ان انسین ورلڈ، اندیکھی دنیا پر یقین رکھنا. اس سیریز میں سے آج کا ہمارا لیکچر ایمان بالملائکہ کا ایک حصہ ہے، اور ہم اس میں دیکھیں گے کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن سنت کیا کہتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ وہ کوئی ایک ایسے ہوگا جیسے ہم لکھتے ہیں دا بک، دس از اے بک، دس از دیٹ، دس دیٹ، یا پھر اس میں ہمارے عمل کی باتیں ہیں. تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی کام ہم کریں لیکن ہمیں اس کے بعد اپنے لیے ایکشن پوائنٹ ضرور لینے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں سنتے وقت آپ کے دل میں ایک خواہش ضرور پیدا ہوگی، اور وہ کیا، جو میرے بھی ہوئی تھی، کہ اللہ جس نے جبرائیل کو پیدا کیا ہے وہ کیسا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل کو 2 دفعہ جو آپ نے دیکھا ہے، تو جب ایک دفعہ دیکھا تو ہم نے کہا تو ان میں سے روبی، آپ کے ریڈ اور گرین، زمرد کے موتی جھاڑ رہے تھے. ہی سو بیوٹیفل. تو پتہ نہیں ہمیں جنت میں دیکھنے کا موقع ملے گا کہ نہیں. مجھے تو دل میں نا جیسے ایک ہوک اٹھی آج صبح ہی اٹھی اسی تیاری کے دوران کہ اللہ یہ تو جبرائیل ہے، تو کیسا ہوگا. ان اللہ جمیل یحب الجمال. تو آئیے دیکھتے ہیں آج اس کے بارے میں قرآن کی جو آیات ہمارے سامنے لیں گے، جہاں ڈائریکٹ براہ راست جبرائیل کا تذکرہ ہے. اور آپ آج پھر حیران ہوں گے کہ قرآن میں اتنی دفعہ جبرائیل کا تذکرہ ہے، اور حدیث میں بھی جتنا ہم آج کور کر سکے اس کو لیں گے. تو سورت نجم کی آیت نمبر 4 سے 8 ہے آج ہمارے سامنے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى. یہ تو ایک وحی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے، اسے زبردست قوت والے نے تعلیم دی ہے جو بڑا صاحب حکمت ہے. وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا. یہ ہے جی جبرائیل علیہ السلام کی آمد. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے دو حصے، ایک معراج اور ایک اسرا. بیت اللہ سے بیت المقدس تک اسرا کہتے ہیں، رات کو سفر کرنا، نائٹ جرنی انگلش میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. اس کا تذکرہ سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله. وہاں جو سفر ان کا تھا وہ ایسے کہلے بائی روڈ تھا، لیکن جو اصل سفر جس کو ہم معراج کے ساتھ جوڑتے ہیں وہ سورت نجم میں ہے. یہ تو میں نے چند آیات پڑھی صرف آپ کے اپنے ذہن سازی کے لیے، اس سے آگے پیچھے بھی ذکر ہے کہ معراج یعنی بیت المقدس سے لے کے سدرۃ المنتہا کے سفر کو کہتے ہیں. یہ وہ سفر تھا کہ جس میں اللہ کے نبی کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا سوائے جبرائیل کے. جبرائیل کون تھے؟ اینجل آف ریولیشن، وحی لانے والے فرشتے. جبرائیل علیہ السلام کون تھے؟ محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ میں بدلنے والے. وحی سے پہلے، وحی میں اردو میں بول رہی ہوں، عربی میں وحش کہتے ہیں یا کچھ بولتے ہیں وحش، تو چونکہ اردو لیکچر ہے تو اردو میں ہے نا، تو وحی ہی بول دیتی ہوں، کوئی بات نہیں ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر تک جب تک جبرائیل وارد نہیں ہوئے آپ محمد بن عبداللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صادق اور امین کہلائے، اللہ نے وہی لقب امین جبریل امین کو دے دیا. بامانت امان تو اللہ. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی ہے، ابھی ان آیات میں دیکھ لیجئے کہ جو لقب آپ نے دیکھے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے وہ کیا کیا ہیں، ذو مرہ، قوت والے جبرائیل. ابھی سب کچھ دیکھیں گے انشاءاللہ ساتھ ساتھ، لیکن میں صرف آپ کو بتا رہی ہوں، شدید القوا ان کو کہا جا رہا ہے، روح القدس کہا جا رہا ہے. جبرائیل کون ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کے پاس وحی لے کر آنے والا فرشتہ. اور جبرائیل کون ہے؟ پہلا لیونگ کریچر اس زمین پہ، دنیا میں. یعنی علماء نے اس چیز میں جو پوائنٹس جمع کیے ہیں ان کے اندر، ان کی عقل پہ اور ان کے قرآن اور سنت کے ساتھ گہرے شغف پہ رش کرتا ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا، اس کو اس کو اس کو. کئی لوگ اور کئی عجیب چیزوں میں رہتے ہیں نا، لیکن جس پہ سب کا وہ کہہ لیجئے کہ اتفاق ہوا وہ کیا، کہ دنیا میں سب سے پہلی، دنیا سے مرت ایوری ون، یہ نہیں کہ زمین، اس میں وہ قلم بھی آ جاتا ہے، قلم پہلی وہ چیز ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا بے جان چیزوں میں سے. لیونگ کریچر کی بات کر رہی ہوں، وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. کیوں؟ کیونکہ جبرائیل کو اللہ نے دو بڑے کام دیے، ایک انسان میں روح پھونکنا. کل کے شام کے لیکچر میں بھی تھا کہ جب 40 دن اور 42 دن ہو جاتے ہیں رحم میں، تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر بچے میں روح پھونکتے ہیں. یہ کام جبرائیل کے ذریعے ہوتا ہے. آپ کے میرے اندر جو روح پھونکی گئی تھی نا، وہ جبرائیل نے پھونکی تھی. حضرت مریم علیہ السلام پریگننٹ ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام آپ کے پیٹ میں جیسے آپ کہتے ہیں کنسیو کر گئیں، وہ جبرائیل کی بھوک تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل کو زندگی والے سے رکھا ہے. انشاءاللہ یہ اسی سیریز میں آپ کو ایک اور لیکچر آئے گا، مشہور فرشتے اور ان کی ذمہ داریاں، اس میں بہت اور بھی چیزیں ملیں گی، لیکن یہاں صرف آپ کا انٹرسٹ اور آپ کے چہروں میں ایک حیرت دیکھ کر بتا رہی ہوں. سارے فرشتوں میں نا 4 فرشتے، دے آر ٹاپ موسٹ، اوپر اوپر. اللہ نے فرشتوں کو جو دی ہیں نا ذمہ داریاں، تو اس میں ایک لیول ہے مقسماتی امرا، جن کو کام تقسیم کیے جاتے ہیں. کچھ حاملین عرش ہیں، کچھ کرامن کاتبین ہیں، फिर कुछ वो हैं जिनको, ये जो मैं चार बताने लगी ना, जिब्राइल और मीकाइल और इसराफील और मलकुल मौत, अगर आप ये दो पेयर बना के नोट्स में लिख सके ना, तो जिब्राइल और मीकाइल ये जिंदगी देने वाले फरिश्ते हैं। जिब्राइल के जरिए रूह फूंकी जाती है और मीकाइल बारिश बरसाते हैं। और सूरत मोमिनून में भी अल्लाह ने फरमाया कि मैंने हर चीज को पानी से पैदा किया है। तो ये दो फरिश्तों का तذکرہ क्या है, जिब्राइल और मीकाइल कैसे, जिब्राइल वन ऑन वन बेस, आप और मैं, मेरे में रूह उन्होंने फूकी, आप में सब में, वन ऑन वन हर बच्चे के। और मीकाइल के इंसानियत में जिंदगी भेजते हैं पानी की, पानी ना होता तो इंसानियत ना होती। इसके ऑपोजिट दो फरिश्ते, इसराफील और मलकुल मौत। हम तो उसको इसराइल कह देते हैं, लेकिन अहदीस में नाम इसराइल नहीं मिलता, मलकुल मौत कुरान कहता है। सूरह सजदा में आप पढ़ते हैं मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किला, जिसको मुकर्रर किया गया। तो मलकुल मौत इनफरादी डेथ, हर बंदे की मौत, उसकी रूह को सल्ब करने का, उसको कब्ज़ रूह कहते हैं, वो मलकुल मौत है। और पूरी इंसानियत की मौत होगी फ़ैज़ा फ़ुनुफ़िख़ा फ़िस्सूर रफ़ील। तो ये चार फरिश्तों को उलमा कहते हैं ये सबसे ऊपर है, उन्हीं में एक जिब्राइल है। और जिब्राइल कौन है, इलीट क्लास के फरिश्ते। जी मैं तो सिर्फ इनकी फजीलतों के लौके बड़े, उनके ये हम जिब्राइल अलैहि सलाम की फजीलत पे बात कर रहे हैं ना, सिर्फ यही बताऊं तो मेरा आज का टाइम पूरा हो सकता है कि इतनी हाई सोसाइटी के, हाई स्कैटी के इलीट में से, और अल्लाह की नजरों में उनका मुकाम देखिए। कि अब अगला जुमला जो देना है वो दे ही दूं कि जिब्राइल फरिश्तों में से कलीमुल्लाह, इंसानों में कलीमुल्ला कौन है, वकल्लमा मूसा तकलीमा, तीसरे पारे के शुरू में अल्लाह ने सारे रसूलों में से मूसा से डायरेक्ट कलाम किया, बाकी बहसों को छोड़ दें और किससे किया नहीं किया। जिस रब मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कलाम किया ना, तो फरिश्तों में से भी अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल से डायरेक्ट कलाम किया। इनको फरिश्तों के कलीमुल्लाह का लकब हासिल है। और इसकी मिसालें, ये तो मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ ना, फरिश्ते रब ने पुकारा या जिब्राइल, देखिए मुकस्सिमाती अमरा का लफ्ज़ मैंने अभी बोला, मैं आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। एक छोटा सा सेटअप है हमारा, नूरुल कुरान के नाम पे क्लासेस करते हैं। अब इस वक्त अल्लाह जानता है कि उसमें कितने 100 लोग हैं जो एज़ आ अल्लाह के दीन के सिपाही बन के काम कर रहे हैं। बट अगर मुझे किसी से बात करनी है, कोई मैसेज देना है, तो मैं हर एक से तो नहीं करती ना, कर ही नहीं सकती। तो फिर उसमें क्लासिफिकेशन होती है ना, हर मुल्क का एक जिम्मेदार, फिर उसके अंडर दूसरे, फिर तीसरे, फिर हर इंस्टीट्यूट का एक बड़ा होता है। अब आप एक मैसेज देते हैं किसको, जिससे आपकी डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है, अब आगे उसका जिम्मा बन जाता है कि वो बात करे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मुकाम उन खुश नसीब हस्तियों में जिनसे अल्लाह डायरेक्ट वन ऑन वन बेस पे बात करता है। कुछ लोग हाथ मिलाने को तरसते हैं, कुछ शक्ल देखने को तरसते हैं, कुछ के पास मौका भी हो तो नहीं होते। तो कोई किसी की किसी बात को दे सके तो ये कहते, अच्छा आपने उनको देखा हुआ है, आप उनको जानते हैं, आप उनको मिले हुए हैं, अच्छा वो आपकी गाड़ी में बैठे हैं, आप ये करें, है ना, होती है ना। अब मैं आपको सिर्फ वो फीलिंग्स दे रही हूँ कि वो भी इंसान तो वो भी इंसान, आम बात है। लेकिन उधर मालिकुल मुल्क और इधर जिब्राइल, अल्लाह डायरेक्ट कलाम करता है। फिर जिब्राइल मुख्तलिफ कामों की, जिसको आप कहते हैं कि हमारी जुबान में क्या बोलते हैं इसको, कामों को बांटने को, ड्यूटीज देना, इसका एक नाम होता है, सारा दिन ही चलता है हमारे वहाँ जी, असाइन, ड्यूटीज असाइन करना। और एक और लफ्ज़ है, अभी मैं अभी बोला था आप में से जी, डिवीजन ऑफ लेबर, और भी एक लफ्ज है वो नहीं आया ना जी, जी मुकस्सिमाती अमरा तो हो गया ना, यानी उसी को बयान करने के लिए अपनी वो जुबान, अभी आ जाएगा दिमाग में, ना भी आए तो कोई बात नहीं। मुराद ये है कि जिसको आप कह सकते हैं कि डेलीगेट करना जी, डेजिग्नेट करना और डेलीगेट करना, कामों को बांटना। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम का मुकाम बहुत आला। फिर नेक्स्ट थिंग जिब्राइल, ये सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों के सरदार है, अल्लाह अकबर। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लम के साथ जिन फरिश्तों ने जंगों में शिरकत फरमाई थी, उनकी क्यादत, लीडरशिप जिब्राइल के हाथ में थी। किसी ने गजवा बदर के बाद कहा कि अल्लाह के नबी, मैंने एक आवाज सुनी थी। क्या कहा? कोई कह रहा था हैजूम, जल्दी आगे बढ़ो। पता नहीं वो कौन था, हमारे बीच में तो कोई हैजूम नहीं। तो आपने फरमाया वो जिब्राइल थे जो अपने घोड़े को कह रहे थे तेज चलो। यानी अंबिया कराम को अल्लाह ताला वो चीजें सुनवा और दिखा देता था जो दूसरों को नहीं दिखाया जाता। तो जिब्राइल ने वहां भी एक सरदार के तौर पे क्यादत की थी। और जिब्राइल कौन है? ताइफ के सफर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक और गमगुसार है। कि जब ताइफ वालों ने आपकी नाकदरी की और आपके ऊपर उबाश लोगों को भेज दिया, पत्थर मारे, जूतियों में खून चिपक गया, और आपने वाक़ा तो सुना ही है दुआए मुस्तदफीन, जिसको दुआए ताइफ भी कहते हैं, अल्लाहुम्मा इलैका अश्कुदा फ़कुव्वती व क़िल्लत हीलती व हवानी अला नास। तो कौन आया था आपके पास? जिब्राइल अलैहि सलाम आए थे, अल्लाह के नबी। अगर आप हुक्म दें तो मैं ये ताइफ के लोगों को दो पहाड़ों के बीच में कर दूं, और वो फरिश्तों का मलकुल जिबाल आया। लेकिन जिब्राइल अलैहि सलाम का एक पूरा मुकालमा, जहां वक्त आएगा मौका आए तो आपको सुनाऊंगी। और अल्लाह के नबी ने कहा कि आप खुद आए हैं कि अल्लाह ने भेजा है? कहा नहीं, मैं खुद आया हूँ, मुझे गुस्सा ही बड़ा आया कि लोग आपकी इतनी इंसल्ट कर रहे हैं। कहा फिर तुम जाओ, हसबी रब्बी, अल्लाह काफी है। तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी के जख्मों पे, दिल पे भी, और जो दीन के राहे हक के रास्ते में आजमाइशें आती थी ना, तो आपके दिल पे फाहे जिब्राइल रखते थे। इतना बड़ा नबी है ये, अल्लाह अकबर। और इनके बारे में आप ये कह सकते हैं कि इतनी बड़ी बात मैं अब आपको बताने वाली हूँ, बुखारी की रिवायत है ये, मैं आपको इस वक्त हदीसें नहीं सुना रही, मैं सिर्फ आपको फील करा रही हूँ कि कितनी बड़ी हस्ती है। सही बुखारी की रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे थे पीछे से जिब्राइल की, और आपने कहा जिब्रील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आम तौर पे जब फरिश्तों का तذکرہ कोई और करता है तो क्या कहा जाता है? अलैहिस्सलाम, जिब्राइल अलैहिस्सलाम। लेकिन अल्लाह के नबी ने जिब्राइल का तذکرہ करके वो लफ्ज़ बोले जो अल्लाह ने सिर्फ नबी सल्लम के लिए बोले हैं, बोलने का हुक्म हमें दिया है। हम सिर्फ अल्लाह के नबी के साथ कह सकते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह सकते, अलैहि सलाम कहते हैं। और इसमें ग्रामेटिकली बहुत बड़ा फर्क है, लेकिन जिब्राइल के लिए अल्लाह के नबी ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इतनी बड़ी हस्ती है। और यकीन कीजिए कि जिब्राइल अलैहि सलाम के बारे में जैसे पहला इंसान है ना, ज़ईफ रिवायत है लेकिन ये बात मौजूद है कि सारी मखलूक में सबसे बाद में जिब्राइल अलैहि सलाम फौत होंगे, और इनका वजूद भी बहुत बड़ा है, सारे फरिश्तों से बड़ा है। और जिब्राइल हाउ ही लुक्स लाइक, कितने बड़े हैं? इनके 600 पर है, 600। और नबी सल्लम ने जब इनको देखा था ना, तो उस वक्त सिर्फ इनके दो पर खुले हुए थे और इनके परों में से मोती झड़ते रहते हैं, पड़ते रहते हैं। और वो दो जब पड़े तो अल्लाह के नबी ने, जब ये वही का फतरतुल वही का सिलसिला ख़त्म हुआ और एक दिन उनको देखा, तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा पूरे उफक पे जिब्राइल है। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आप कह सकते हैं कि तीन बड़े फरिश्ते इनके अलावा जो मैंने अभी आपको बताए, जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील, और मलकुल मौत को इसमें डाल भी देना, तो ये उन सब में से सबसे ऊपर है, सरदाराने मलाइका में से एक है। और अल्लाह के नबी की एक दुआ आज भी शायद तहज्जुद में आपने पढ़ी हो, अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्राइल व मीकाईल व इसराफील फातिर समावाति वल अर्द आलिमल गैबी व शहादा अंत तहकुमु बैना इबादिक फी मा कानू फीही यख्तलिफून इहदिनी लिमख्तलिफ फीही मिनल हक बेसनिका इन्नक तहदी मन तशाउ इला सिराते मुस्तकीम। आप इसको फील करें, और अगर आज नहीं पढ़ी या नहीं पढ़ते थे तो इसको आप हिस्नुल मुस्लिम की शुरू की दुआओं में है। आज रात जब फजर से पहले अल्लाह आँख खोलवा दे तो इस दुआ के तर्जमे पे गौर करते हुए जिब्राइल को याद कीजिएगा। ए अल्लाह, ए जिब्राइल, मीकाईल और इसराफील के रब, आसमानों और ज़मीन को पैदा करने वाले, मख्फी यानी छुपे हुए और जाहिर को जानने वाले, जिन चीज़ों में तेरे बंदे इख्तलाफ करते हैं इन में तू ही फैसला करने वाला है, तो अपने हुक्म में मुझे इख्तलाफी बातों में से उस चीज़ की तरफ हिदायत अता फरमा जो हक है। यकीनन तू जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत अता फरमाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिखाई हुई इस दुआ से भी आप देख रहे हैं कि इन तीनों फरिश्तों का तذکرہ इकट्ठा हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम एक अनयूजुअल हस्ती का नाम है। अल्लाह सुबहान तआला जिसको जहाँ भी कोई इज्जत दे दे, जिससे कोई काम ले ले, जिसको अल्लाह ताला चुनना चाहे, ये अल्लाह ताला के फैसले होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला वाकई चुन लेता है, अपने बंदों को चुनता है। तो फरिश्ते इंसानों और जिन्नों के मुकाबले में बहुत बड़ी अजीम मखलूक है, और ये चार उनमें से भी अहम, और इन चारों में से जिब्राइल सबसे ऊपर। दो आयतें कुरान की नोट कीजिएगा। सूरह तहरीम आयत नंबर 4, फ़इन अल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन वल मलाइकतु बादा ज़ालिका ज़हीर। यकीनन इसका कारसाज़ अल्लाह है और जिब्रील हैं और नेक ईमानदार, और इनके अलावा फरिश्ते भी मदद करने वाले हैं। यानी अल्लाह के नबी की अजवाज ने जब कुछ एक ऐसा मामला उनसे हो गया तो अल्लाह ने यह आयत उतार कर दी कि इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तुम कोई कॉन्स्पिरेसीज ना रखना, इसका साथी तो जिब्रील भी है और नेक लोग भी हैं। इसी तरह सूरत तकवीर आयत नंबर 19 से 21, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की अमानत और दयानत और कुव्वत और शान, चार चीज़ें आप देखेंगे इन दो तीन लफ्ज़ों में। इन्नहु लकौलु रसूलिन करीम, रसूलिन करीम उंगलियों पे भी गिन लें। ज़ी कुव्वतिन इंदा ज़िल अर्शी मकीन, नंबर 3 मुताइन, फिर चौथी थम्मा अमीन। थम्मा नहीं आया इधर, थम्मा आया है। ये जब कभी इनडेप्थ स्टडी होगी सूरत की फिर देखिए ये सम्मा सम्मा में क्यों बदल गया। तर्जमा क्या है? यकीनन ये एक बुजुर्ग पैगंबर का कहा हुआ है जो कुव्वत वाला है, अर्श वाले अल्लाह के नज़दीक बुलंद मर्तबा है, जिसकी आसमानों में इताअत की जाती है, और वो अमीन है। यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुबहाना ताला ने इतनी इज्जत के साथ इन आयात में मेंशन किया कि रसूलिन करीम। करीम कौन होता है? अरब लोग किसी चीज़ को बहुत ही जेनरस या बहुत बाइज्जत कहें ना, जैसे हमारे इंग्लिश में कहते हैं मेजेस्टिक या फलां फलां, कई रिस्पेक्टेबल और फलां। तो करीम सबसे ऊपर, हज़रत यूसुफ के नाम में भी आता है करीम इब्ने करीम इब्ने करीम करीम इब्ने करीम। और कुव्वत वाला कितना है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम जी कुव्वतिन, कितनी कुव्वत है? ये भी इनके खसाइस में लिख लें शुरू में जो बोल रहे हैं लफ्ज़, कि जिब्राइल वो हैं जिनके पर की नोक से कौमे लूत की पूरी बस्ती उलट दी गई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने कुव्वत वाले कि पिछली कौमों पे जब अजाब आए थे ना, वही जिब्राइल ही लाते थे। इसी पे तो झगड़ा था मक्का वालों का, और वो यहूद ने जो सवाल किया तो वो आगे अपनी जगह पे हदीस आएगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कौमे लूत की बस्ती के नीचे अपने पर, ये मेरे हाथों को देखे, ऐसे डाले जैसे अब छाज में गंदम डाल के फिर उसको उछालते हैं ना, कभी पाकिस्तान में देखा हो पुराने दौर में, अब तो अल्लाह जाने क्या होता है। तो वो जो छाज ऐसे फटकते हैं तो वो जन मट्टी मुट्टी आगे आ जाती है और असल गंदम पीछे चली जाती है ना, जिब्राइल ने ऐसे डाला और उसको ऐसे करके उछाला। तो वल मोताफिकात, वो बस्तियां अपसाइड डाउन, छतें नीचे और फर्श ऊपर चले गए, और इतनी जी कुव्वत वाले कि ऊपर से फेंका तो वो बहरे मुर्दार बन गया। प्रेशर के साथ वो बस्ती जमीन में गई, आज भी डेड ओशन है, रेड सी बोलते हैं गालिबन उसको, रेड सी मौजूद है वहाँ। ये उसकी जी कुव्वत थी। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम की कुव्वतों का अगर आपने अंदाजा करना हो तो आप हैरान होंगे कि अब मैं जो बात कहूंगी ना, अब आप लर्जेंगे। क्या आपके घर में इधर जमजम है? आप सब कहेंगे जी, और यादहानी के लिए जुमले को रहने दें कि ये लेक्चर आज हमारा दमाम में, सऊदी अरब में, अरामको के एक बहुत अच्छे साथी के घर में और बहुत प्यारी सिस्टर्स के सामने हो रहा है। अगर ये जमजम है ना, और ये जमजम जिब्राइल अलैहिस्सलाम के पर की वजह से निकला था, एड़ी इस्माइल की थी, लेकिन ठोक कर उसमें जिब्राइल ने लगाई थी जी कुर्बा। और मैं आपको अलग से किसी, अब तो बात ही बदल जाएगी ना अगर इस पे बात करूं। अगर सेमिनार होता तो मैं सिर्फ इस पे आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री दिखाती कि जमजम के चश्मे से 1 मिनट में कितने हजारों गैलन पानी निकल रहा है, और कब से निकल रहा है, जब से बीबी हाजरा की ममता ने तड़प तड़प के सफा और मरवा के बीच में चक्कर लगाए, और वो छोटे से इस्माइल के रोने को बर्दाश्त नहीं कर रही थी भूख और प्यास से। वो दिन से आज का दिन, और आज से लेके क़यामत तक, जब तक अल्लाह चाहेगा, जो जमजम निकल रहा है वो जिब्राइल की पर की वजह से निकल रहा है। एड़ी उसकी थी, आप लाइए बच्चे की एड़ी से क्या निकलता है, लेकिन पीछे। और इन सब की बातों की दलाइल है, मैं आपको ऐसे कोई लंबी चौड़ी बात नहीं कर रही। पढ़िए अलविदा नहाया, पढ़िए कसस नबीयीन, पढ़िए तारीख इंसानियत की, पढ़िए सलफ सालेहीन ने जो तफासीर लिखी हैं, उसमें आपको खजानों के खजाने अभी दिखेंगे जो अभी डिस्कवर ही नहीं हुए। तो जिब्राइल की इतनी कुव्वत थी। मैं सोच रही थी कि यहाँ फिर आप सबके लिए सेंसिटिविटी के लिए गाऊंगी, अपने लिए एक दुआ किया करें कि अल्लाह मेरे से कोई काम लेना कभी ख़त्म ना हो। एंडलेस चैरिटी, सदका जारिया, सदकतुन जारिया, ऑन गोइंग चैरिटी। आप तो सऊदी अरब में रहते हैं, आपके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है, मेरा अलग 12-14 घंटे ड्राइव भी करके जाएंगे तो हरम में जा सकते हैं ना बीवी, कोई वीज़ा नहीं, कोई जहाज़ टिकट नहीं, जैसे बाहर की दुनिया को कितनी प्रॉब्लम्स होंगी, फिर आते हैं ना और हज़ारों डॉलर लगा कर आते हैं सिर्फ एक उमरा करने, लोग लाखों डॉलर जो लगा के जाएंगे अगर आप उनको कह दें कि ये करना है आज तो आ जाएंगे। आप सबके पास एटलीस्ट वंस अ मंथ स्पिरिचुअल उमरा किया करें, बच्चों को गाड़ी में बिठाएं, कोई ये स्नैक्स की बास्केटें भर भर के नहीं जाना, क्या खाएंगे वो खाएंगे, रास्ते में कहाँ कहाँ रुकना, ना ना ना, वो नन्हे इस्माइल की भूख प्यास वाला उमरा कराए वंस अ मंथ का, एक दफा महीने में, यकीन करें बाकी 29 या 28 दिन महीने के सीधे रहेंगे आपके बच्चे। हमने अपने बच्चों को इतना पानी दिया कि गलने लगे, पौधे को ज्यादा पानी देना तो गल जाता है, चावलों को भी ज्यादा पानी लगा दे तो गल जाते हैं, घर से कोई चीज खत्म ही नहीं होने देते। एक चीज खत्म हो जाए तो मैं जान पे बन जाती है, हालांकि उस एक चीज के एटलीस्ट 10 अल्टरनेट हमारे घर में मौजूद होते हैं। तो वो जो जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुबहाना तआला ने कुव्वत दी थी ना, वो जो ताकत दी थी ना, उसका जिक्र है ज़ी कुव्वा ज़िल अर्शिल मकीन, अर्श वाले अल्लाह के नज़दीक बुलंद मरतबा। हम कैसे दुनिया वालों के नज़रों में बड़े बाइज्जत बने होते हैं, हर बंदा अपनी फील्ड का माहिर होता है, कोई डॉक्टरों में बड़ा बन जाता है, कोई सियासत में नाम है, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में होगा, यहाँ के एंड ज़िल अर्शिल मकीन, ये भी नहीं कहा ज़ी कुव्वतन इंद अल्लाह, ये भी बड़ी बात थी, ज़ी कुव्वतन इंद रहमान। आप दो लफ्ज़ देखे ना, अगर आयत आप सामने खोली हुई है ना, इंद ज़िल अर्शिल मकीन, यानी वो खुद इतनी ज्यादा कुव्वत वाले हैं जिब्राइल, और उनकी इज्जत बहुत बड़े अर्श वाले अल्लाह के नज़दीक है, जब अल्लाह की नज़र में उनकी इज्जत होगी तो वो क्या चीज़ होंगे। और मुतायन, ये मुतायन लफ्ज़ पता क्या है, आप में से हर एक की ख्वाहिश है कि आप अगर मुजक्कर में ही बोल दो कि मुतायन हो, और वो क्या कि आपकी बात मानी जाए। हम कहते हैं हमारी बात नहीं मानते, मियाँ साहब तो मानते ही नहीं है, बच्चे तो सुनते ही नहीं है, आजकल की तो मेड्स के भी नखरे हैं, हुक्मरान भी ऐसे हैं। लोग कहते हैं ना मुता, कहते हैं वो शख्स जो मुंह से आधा जुमला बोल दे उसकी सारी टीम सीधी हो जाए, ये हम सबको मांगने की जरूरत है। हमारा हर वक्त रोना ही होता है कि लोग हमारी बात नहीं मानते, तो जिब्राइल एक इशारा कर दें तो बाकी जो उनके अंडर उनकी टीम और उनके साथी हैं उनकी बातें मानने लगते हैं, और सम्मा अमीन, फिर वो अमीन भी है, अमानत का हक अदा करते हैं। क्यों भला, दुनिया की सबसे कीमती चीज अल्लाह ने उनके सपोर्ट किया, दुनिया का लिखें सबसे द मोस्ट मोस्ट सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, दुनिया में क्या होगा। मैं आपको पहले जरा सा बेदार रखूं, आपको पता है कि हर एक के पास डॉक्यूमेंट्स के डिफरेंट लेवल्स होते हैं ना, लेकिन किसी भी इंसान के लिए सबसे कीमती डॉक्यूमेंट यूएसए में क्या समझा जाता है, पासपोर्ट। अभी 2-3 दिन पहले भी ये एयरपोर्ट पे भी आपके लिखा होता है एहविस वीला, क्या बोलते हैं पासपोर्ट, जवाजुक, अपने पासपोर्ट की हिफाजत कीजिए क्योंकि ये आपकी जमानत है, सफर में पासपोर्ट गुम गया तो आपको जहाज में नहीं डालने देंगे। और पासपोर्ट के बारे में ये तक है कि इसको बाय पोस्ट नहीं आप भेज सकते, आप किसी और मुल्क में आप पोस्ट में अपना पासपोर्ट नहीं भेज सकते, इलीगल है ये सब कुछ। इल्ला ये कि कोई गवर्नमेंट की आपके पास पेपर हो के जी आपका रिन्यू करने जा रहा है अमेरिका, जैसा कि बाहर के मुल्कों में आप कैसा होता होगा। दुनिया का सबसे सेंसिटिव और कीमती और हसास डॉक्यूमेंट जालिकल किताबुल ग़ैब, अल्लाह ने ये जिब्रील अमीन के हाथों भेजा था। कुरान कहता है अला कल्बी का ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नज़ल हो बी रूहिल कुदस, रूहुल कुदस इसको आपके दिल पे इल्का करते हैं ये कुरान, तो वो अगर उसमें खयानत हो जाती। और आपको पता है कि कुरान के नज़ूल से पहले शैतान और काहिन आसमानों पे जाके फरिश्तों की बातें सुनते थे। जब से कुरान का नज़ूल शुरू हुआ जिन्नात भी हैरान हो गए, सूरह जिन के शुरू की आयतें पढ़ लीजिए कि क्या हो गया आजकल, मौलियत हरसन कि यहाँ तो बड़े चौकीदारी हो गई, क्या हुआ है, कहा कुरान का नज़ूल शुरू हो गया। इतना सेंसिटिव पासपोर्ट, इतनी इंसानियत की हिदायत है इसमें, आपने मैंने इसको पता नहीं क्या समझा, या तो पढ़ते हैं तो फर फर पढ़ लेते हैं, नहीं पढ़ते तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ते, तहफीज में लगे हुए हैं, ग्रामरों में लगे हुए हैं, हम इस कुरान की बहसों में लगे हुए हैं, लेकिन हमें इसका वो जो सहर जो आपके दिल पे उतरे और कुरान आपकी जुबान पे जारी हो जाए वो नहीं आता। चले मैं अपना शौक पूरा कर लेती हूँ, इधर है कोई कुरान पाक, इसी में है, सबको पता है जो मैं कहना चाह रही हूँ, मेरे पास कुरान इसमें माशाल्लाह बहुत सारे नुस्खे हैं। सादा कुरान जब आपके सामने खुलता है, ये देखिए अभी खुल रहा है, दिखाती हूँ आपको, ये सादा कुरान है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, ये खरम में भी यही मिलता है आपको, बता ऐसे ही है ना, कितनी सूरतें हैं, 114, कितने रुकू हैं, 500 कुछ, आयतें कितनी हैं, 6000 कुछ, कितने पारे हैं, 30, सबको पता है। चलिए खोलिए पढ़ते हैं, कहीं से भी जब कुरान खुलता है तो मुझे समझ कितना आता है। या जब साहब पूछिए, जिब्राइल तो इज्जत वाले, और आप कहते हैं जिब्राइल क्यों बाइज्जत है। अब एक और जुमला जो मैंने अभी तक अपने इस मेरा 20 मिनट तो हो ही गए होंगे इस लेक्चर में नहीं बोला, वो लिख लें, इतनी बड़ी बात है ये जो मैं अभी कहने लगी हूँ, शुरू लेक्चर में ही आपको बता दिया कि यूमिनूना बिल गैब में ईमान बिल मलाइका है, पता है ये बात तो समझ गए ना, यदि आप में से मेरे में से कोई जिन्नात पे ईमान ना रखे ना तो फिर भी वो मुसलमान रहेगा, आप जरासीम को नहीं मानते ना आप फिर भी मुसलमान है, आप बैक्टीरिया वायरस कोरोना को नहीं मानते आप मुसलमान है, लेकिन अगर आप ये कहते ना कि आई डोंट बिलीव इन एंजल्स तो आप मुसलमान नहीं है, ईमान ही नहीं है। ईमान बिन मलाइका, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में भी मिसाल दी कि टेबल की एक टांग, टांग टूट गई तो टेबल टेढ़ा हो गया, समझ गए, बिल्कुल इसी तरह से ईमान बिन मलाइका को क्यों अल्लाह ने इतना अहम किया। इमाम इब्ने कय्यम का कॉल लिख लीजिए, कहते हैं कि ईमान बिल मलाइका को ईमान का एक कंपोनेंट बनाना उसकी वजह जिब्राइल है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम की वजह से अल्लाह ने इसको इतना ज्यादा मुकाम दिया, क्योंकि जो जिब्राइल को नहीं मानेगा तो वो वही को कहाँ से मानेगा, तो जो वही पे शक करेगा वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल कैसे मानेगा, तो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल नहीं मानेगा तो वो इस्लाम को कहाँ से मानेगा, सारा दीन खुलैप हो जाता है, इतनी शान है इनकी। अब सवाल ये है कि जिब्राइल लफ्ज़ को बोलते कैसे हैं, हैरान होंगे आप, हम तो उर्दू में बोलते हैं ना जिब्राइल, अभी जो मैंने दुआ भी आपके सामने पढ़ी ना उसमें भी जिब्रील है, कई लोग गलती खाते हैं, अच्छा जी ये गलत लिखा हुआ है मिस प्रिंट है, तो लिखिए इमाम कुर्तुबी रहमहुल्ला, उन्होंने लफ्ज़ जिब्राइल के 10 10 तलफ़ुज़ हैं इसके, 10 different types से, मैं बोलती हूँ आप सुनना चाहें तो सुन ले, लिखना चाहें तो लिख लें, क्या लिखे हैं उन्होंने तफसीर कुर्तुबी में मौजूद है, एक लफ्ज है जिब्राइल, जिब्राइल जब्राइल लाम पे शद डाल दें, तीसरा जब्राइल लाम पे एंड पे ख़त्म हो रहा है, फिर फोर्थ क्या है जब्राइल हमजा को लाम के साथ ख़त्म कर दें जब्राइल, फिफ्थ है जब्राइल फिर जब्राइलु जिब्रीलु जिब्रील दो या बनती हैं, फिर जब्राइन और जिब्रीन, तलफ़ुज़ कैसा फ़र्क है क्यों, ये नाम इसलिए इतने मुख्तलिफ क्यों हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ के मुख्तलिफ नाम होना उसकी मोर कॉम्पिटेंसी को साबित करता है, उसकी अफादियत, उसके अंदर और कह लीजिए कि खूबियों का इजहार होता है उसके अंदर। और जिब्राइल अलैहिस्सलाम के इन सारे एक्सेंट्स के अलावा इनका एक नाम रूह भी है। कुरान पाक ने जिब्राइल को रूह कहाँ कहा है? सूरत शोरा आयत नंबर 192-194 तक, व इन्नहु लतन्ज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिक लितकून मिनल मुनज़िरीन। आप पता है कुरान पाक का तारुफ है या एक साइड नोट लिखना चाहे तो लिख लें, फिकी यानी जो इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में कुरान की तारीफ है ना, डेफिनेशन ऑफ कुरान, वो ये है क्या? और बेशक ये कुरान रब्बुल आलमीन का नाजिल फरमाया हुआ है, इसे अमानतदार फरिश्ता लेकर आया है, आपके दिल पे ये उतरा है ताकि आप आगाह करने वालों में से बन जाए। रूमुल कुरान में जब लफ्ज कुरान पे बात होती है तो ये तारीफ हम लोग लिखाते हैं, पूरा मुकम्मल तारुफ है। जैसे आप कहते हैं ना कि अली एक लड़का है, उसके अब्बू का नाम ये है, वो अमेरिका की स्टेट जॉर्जिया में अटलांटा के मतलब हॉलकॉम सिटी की उस रोड पे फलां जगह रहता है, ये उसका तारुफ हुआ ना, उसने कुछ ये किया वो, कुरान का ये तारुफ है। लिख ले जिब्राइल वो है कि जिनके तस्करे के बगैर कुरान का तारुफ ही पूरा नहीं होता। और यहाँ जिब्राइल को क्या कहा गया? नज़ल बिही रूहुल अमीन। अल्लाह अकबर। इसी तरह सूरत बकरा आयत 97, ये वो जिक्र है जहाँ यहूद ने क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू कर दिया था अल्लाह के नबी से, क्या कहा? कुल मन कान अदुवल्ली जिब्रील। अब यहाँ देखिए क्या एक्सेंट है, जिब्रील, ठीक है तो गलती नहीं है, ये है उनका नाम। फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाह। ए नबी, आप कह दीजिए कि जो कोई जिब्रील अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो तो अल्लाह ताला भी उसका दुश्मन है, बिला शक इस जिब्राइल ने तो इस कुरान को यानी अल्लाह के पैगाम को आपके दिल पर नाजिल किया है। सुभान अल्लाह। ये आयत भी बहुत फैसिनेटिंग लगती है, क्योंकि यहूद को जब पता चला ना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वही जिब्राइल लेकर आते हैं तो कहेंगे हम नहीं बोलते, हमारी जिब्राइल से दुश्मनी है। क्यों भाई? ये हमेशा सख्त अहकामात लेके आते थे, तो रात में इन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि तुम जो दिल चाहे करो, जो चाहे खाओ, मनमाने काम करो, ये इतनी सख्त शरीयत क्यों लाते हैं कि ये ना करो, ये करो, पर्दा करो, हराम नहीं खाओ, ये नहीं देखो, वो नहीं देखो, हम नहीं बोलते जिब्राइल से। और दूसरा कहते थे ये कौमों पे हमेशा अजाब ही लेके आते हैं, तो भाई कौन, हम ही का इलम अच्छे लगते हैं क्योंकि वो तो मीठी मीठी बातें करते हैं ना। अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी कि तुम जिब्राइल के दुश्मन नहीं, तुम मेरे दुश्मन बन गए क्योंकि तुमने मेरे प्यारे के साथ दुश्मनी की। इसी पे वो हदीस है कि जिसने अल्लाह के किसी वली के साथ दुश्मनी की, अल्लाह के दोस्त समझाइए कि एक सही नेक बंदे को बुरा भला का, फिर अल्लाह उसका दुश्मन हो जाता है। इसी तरह सूरत मरियम की आयत 17 में और सूरह कदर जिसको आप सब जुबानी पढ़ते हैं माशाल्लाह अक्सर नमाजों में, क्या? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। उसमें भी आपको रूह कहा गया। थोड़ा सा लफ्ज जिब्राइल पे बात करते हैं कि जिब्रील का तर्जुमा क्या है। अब अगर आप लिखे जिब्राइल या जिब्रील, मीकाईल एक ही लो में लिखे, इसराफील, इनका आधा हाफ क्या है? ईल ईल ईल, शुरू में जिब्र, दूसरे में मीका और तीसरे में इसरा, तो देर इज समथिंग कॉमन इन ईल, ठीक है। इसीलिए इनके बारे में मुख्तलिफ सलफ साले इनके चंद अकवाल आपको बोलती हूँ। इमाम बुखारी कहते हैं कि इकरमा जो सहाबी थे उनके नाते से आता है, कहते हैं कि जिब्र व मीक व इसराफ इज इक्वल टू अब्द और ईल अल्लाह, यानी जिब्राइल का मानी अल्लाह का बंदा है, मीकाईल का मानी भी, वो फ़र्क है वो भी आपके सामने आता है। इसी तरह इसराफील का मानी भी अल्लाह का बंदा। ईल कहते हैं अल्लाह को, बाज़ कहते हैं हिब्रू में भी ऐसे ही बोलते हैं, जैसे उर्दू में आप बोलते हैं ना नाम अब्दुल्ला, अरबिक लफ्ज़ है ना अब्दुल्ला, तो जिब्राइल इज इक्वल टू अब्दुल्ला। अब जब तीनों का मानी हुआ अब्दुल्ला, तो फिर अब्दुल्ला में भी दो फॉर्म्स होती हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता चलने लगी आपको। देखिए, एक लफ्ज होता है अब्दुल्ला, आपके बहुत सारे होंगे इस नाम के। एक होता है उबैदुल्ला, उबैदुल्ला का लफ्ज क्या है? तस्गीर। जैसे आप कहते हैं बच्चा, और छोटे को क्या कहते हैं? बिचुंगड़ा। अरबी जबान में ये पूरी तस्गीर है, इसम तस्गीर है। तो इस पे हजरत इब्ने अब्बास का कॉल भी है, और मुख्तलिफ मुफसरीन ने उसको लिखा। वो कहते हैं कि जिब्राइल का मानी अब्दुल्ला और मीकाईल का मानी उबैदुल्ला, यानी जिब्राइल बड़ा भाई और मीकाईल उससे छोटा भाई है। ये कॉल है। इसी तरह एक और हमारे सलफ सालीन का कॉल है, वो क्या कहते हैं कि इसराफील का मानी अब्दुर्रहमान भी है। इसकी भी दलील मौजूद है तफसीर कुर्तुबी में, बहुत कुछ है इसके ऊपर। तो क्या पता चला कि जिब्राइल का मानी अल्लाह का बंदा, स्लेव ऑफ अल्लाह, अल्लाह हमें भी बना दे। अब सवाल ये है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारियां क्या हैं? शुरू में मैंने इंट्रो में एक दो जुमले बोल दिए थे। तो नंबर एक, पहला काम बुनियादी तौर पे जिब्राइल को जो दिया गया कि वो अल्लाह ताला का पैगाम यानी वही उस दौर के रसूल जिसको अल्लाह ने चुना उस तक पहुंचाए। हर नबी पर अल्लाह की तरफ से पैगाम लेकर जिब्राइल आए। इनकी उम्र कितनी लंबी होगी? आप देखिए कि जिब्राइल पहला क्रिएचर, और अभी आपको बताया कि आखिरी भी ये होंगे। कहीं इनकी डेथ की बात आएगी आगे तो सुनाऊंगी। इवन यानी हम तो कहते हैं कि मलकुल मौत, हमने खुद भी कई दफा ये जुमले और हदीस सुनी है ना कि अल्लाह ताला मलकुल मौत को बुलाएंगे, कि अल्लाह ताला जो काम मुझे आपने दिया था मैंने कर दिया। तो फिर वो कहेंगे कि सबको कर दिया तो चल तुम अपनी भी जान लो। जिब्राइल उस वक्त भी जिंदा होंगे। वो कैसे मरेंगे ये अब नेक्स्ट एपिसोड, आपको आना पड़ेगा अगले लेक्चर्स में भी। अल्लाह अकबर कबीरा। बाज़ रिवायात में आता है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारियों के बारे में एक हदीस है कि कुछ यहूद नबी सल्लम के पास आए और कहने लगे, इन्नहु लैसा नबी मिन अंबिया इल्ला यातीही मलकुम मिन अल मलाइकति मिन इंदी रब्बिही बिर रिसाला व बिल वही फमन साहिबुका हत्ता नताइबुका। समझ आई क्या होगा? कहते थे हर नबी के पास फरिश्तों में से एक फरिश्ता अल्लाह का पैगाम और वही लेकर आता था, आपके पास कौन सा फरिश्ता आता है ताकि हम भी उसकी इत्तबा के बारे में डिसाइड कर लें कि हमने मानना है कि नहीं मानना। आपने फरमाया मेरे पास जिब्रील आते हैं अलैहिस्सलाम। तो उन्होंने वही कहा कि हमारे बारे में वो तो एक तो जिहाद का हुक्म ले आते थे और किताल का हुक्म लेकर आते थे, ये तो हमारे दुश्मन है। हाँ, अगर आप मीकाईल अलैहिस्सलाम का नाम लेते जो बारिश और रहमत लेकर आते हैं, तो हम फिर जरूर आपकी तबाह करते। उस पे फिर ये बकरा आयत 97 नाजिल हुई थी, कुल मन खाना दो वल्ली जिब्रील फ इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह। क्या नबी, आप कह दीजिए कि जो जिब्राइल का दुश्मन हो तो अल्लाह भी उसका दुश्मन है, और बेशक जिब्राइल ने तो इस कुरान को अल्लाह के नबी के दिल पर उतारा है। इसी तरह की रिवायात और भी मौजूद हैं यहूद की तरफ जो मंसूब की जाती हैं। तो जब पूछा गया कि फरिश्तों में से कौन सा दोस्त आपका है और हम उसे मान लें, तो आपने फरमाया था वली जिब्रील वलम यबसल्लाहु नबीयन कत्तुन इल्ला वहुवा वलीयुहु, कि मेरा भी दोस्त इब्राहिम है और अल्लाह ने जितने अंबिया को भेजा उन सब का दोस्त भी जिब्राइल था। इस पर यहूद ने कहा, हम तो आपकी बात नहीं मानेंगे, हम आपके पीछे नहीं चलेंगे क्योंकि हमें जिब्राइल अच्छे नहीं लगते। मैं सोच रही हूँ कि जिस फरिश्ते पे आपको इतना प्यार आ रहा है इस वक्त, यहूद उनसे हेट करते हैं जी। यानी जब आप दीन की असल से हट जाएंगे ना, तो फिर ऐसे ही होगा। फिर आप शख्सियात में खो जाएंगे, फुलां बता रहा है इसलिए नहीं मानना, फुलां ने कहा है इसलिए नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो अल्लाह के नबी ने उनसे कहा था, फमा यमनाउकुम, तुम्हें क्या चीज रोकती है कि अन तसद्दकूहू, कि तुम उनकी तस्दीक करो। तो उस पे फिर अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल की थी। तो सारी बात जितनी मैंने की है इसका खुलासा कर देती हूँ कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम, अल्लाह सुबहान ताला ने इनको इंसानियत के लिए लिया।